आत्मानुशासन लेक्चर नंबर एक। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। ये जो आत्मानुशासन ग्रंथ है, गुणभद्र आचार्य का है और उस पर प्रवचन दिए है मनोहर लाल जी वर्णी ने। हम यहाँ जो संपादकीय उसको पढ़ के चलते आने, प्रवचन शुरू के पहले संपादकीय जो लिखे हैं वो पूज्य श्री 105 शुल्लक मनोहर जी वर्णी। देखो जैसे मुनियों को 108 लगाने की पद्धति है, शुल्लक जी को 105 लगाते हैं। सहजानंद महाराज की परम अनुकंपा की जो नवनीत उनके चित्त में प्रादुर्भूत हुआ, उत्पन्न हुआ, जिस अमृत को उन्होंने अनेकों कठोर तपस्याओं से प्राप्त किया उसको वह बांट रहे हैं सर्व जगत को निःशुल्क। जो आए वह पीकर अमर हो जाए, कितनी करुणा है तथा कितना वात्सल्य था उन्हें प्राणी मात्र से कि वे विषय वासना की भट्टी में बढ़-बढ़ जलते देखकर उसको वहां से निकाल देना चाहते थे। जिस देव को उन्होंने हृदय की गहन गुफा में स्थूल व सूक्ष्म अनेकों आवरणों को भेद करके बड़े परिश्रम से खोज निकाला है, जिसके एक क्षण के दर्शन मात्र से भवों के संताप शांत हो जाते हैं और समस्त वासनाएं शांत होकर अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है, उस आत्मा के दर्शन कर लेने से एक अनुभूति होती है, हृदयगत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आवरणों का भेदन हो जाता है, संस्कारों की दिशा भी बदल जाती है, क्योंकि अनादि से मिथ्यात्व के संस्कार थे, अभी तो सीधे हो गए सारे। शांतिजनक नवीन संस्कारों का उदय होता जाता है, इसी को संवर कहते हैं। पुस्तक ले लेना वहां से दोस्तों, अभी रेड पहला भाग है। नवीन संस्कारों का संचय पुराने संस्कारों की शक्ति को भी क्षीण कर देता है, इसको निर्जरा कहते हैं। यह समस्त प्रक्रिया आगम में उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदय, उदीर्णा आदि विभिन्न नामों से कही गई है। एक दिन साधक के हृदय में उस ज्ञान मूर्ति के दिव्य दर्शन होते हैं। यह आत्मानुशासन परम पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य देव ने लिखा है, जिस पर पूज्य सहजानंद जी वर्णी के बहुत ही हृदय स्पर्शी, सार गर्भित और सरल प्रवचन हुए हैं, जिसके अध्ययन से आत्मा का स्पर्श हो सकता है। वस्तु की हृष्ट कार्य व्यवस्था के दो प्रमुख कारण हैं, अंतरंग और बाह्य। वस्तु का स्वभाव उपादान है, उपादन नहीं, उपादान है, और उसके साथ अन्य उचित वस्तुओं का संयोग निमित्त है। अनेकों चित्र विचित्र कार्यों को प्राप्त प्रकृत वस्तु अवश्य सदात्मक होनी चाहिए, यह वस्तु का एक स्वभाव हुआ। जिसे आगम का अस्तित्व गुण के नाम से कहते हैं। एक वस्तु दूसरी से विलक्षण प्रतीत होती है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं आदि। वैसे तो समस्त पदार्थ सत्स्वरूप की दृष्टि में एक समान है। प्रत्येक पदार्थ सत्स्वरूप यानी सत की अपेक्षा देखो तो सभी समान है, सभी सत है, ये कहना चाहते। फिर बाद में उसके विशेष गुणों की अपेक्षा से भेद डालेंगे। प्रत्येक पदार्थ में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अग्रलघुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, ये छह गुण हुआ करते हैं। पूज्य श्री सहजानंद जी वर्णी ने इस ग्रंथ के माध्यम से अपने प्रवचन द्वारा इन सबका स्वरूप बतलाया है। पूज्य वर्णी जी के अनेकों आर्ष ग्रंथों पर प्रवचन किए हैं, जैसे प्रवचन सार प्रवचन, देव पूजा प्रवचन, समय सार प्रवचन, परमात्म प्रकाश प्रवचन, नियम सार प्रवचन, षोडश भावना प्रवचन, ज्ञानार्णव प्रवचन, अध्यात्म सहस्री, रत्नकरण श्रावकाचार, रत्न और करण एक शब्द है, श्रावकाचार एक शब्द है, ये श्रावक के आचार है ना वो, मोक्ष शास्त्र रयण सार आदि पर प्रवचन किए हैं। इनके अतिरिक्त अनेकों ग्रंथों की रचना की है, जिनकी लेखनी आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। पूज्य वर्ण जी के कलम से जो निकला उसका जवाब नहीं, उसका सानी नहीं है, सानी जी उसके तुलना है, सानिया ने उसके समान क्या होता है, समानता। हाँ, अनेकों महान महान ग्रंथ लिखे हैं, बड़े रुचिपूर्ण अंतर को झकझोरने वाले अनेक ग्रंथों को सुलझाने में समर्थ न सर्वोपरि आत्मकल्याण में अभूतपूर्व योग देने वाले, आइए इन्हें पढ़े मनन करें, इनमें छिपे अनेक बहुमूल्य रत्नों को हस्तगत करें। ये जरा वर्णी जी के बारे में उन्होंने जो कुछ जीवन परिचय दिया है उसको भी देख लेते हैं। फ्रंट पेज के पीछे सेकंड पेज पर जो है ना, वो फोटो के सामने वाला पेज, जन्म नाम मगनलाल, चिरोजाबाई जी द्वारा प्रचलित नाम मनोहर लाल। अभी जन्म तिथि से कुछ मतलब नहीं, परंतु सन 1915 के है, जन्म स्थान बुंदेलखंड के कोई टिकमगढ़ के है। गुलाब राय जी पिता का नाम, माता सूर्य है। शिक्षा देखते देखो, सिद्धांत शास्त्री, न्याय शास्त्री, साहित्य शास्त्री, न्याय तीर्थ की परीक्षाएं उत्तीर्ण। शिक्षण कार्य बरुआ सागर विद्यालय के प्रधान आचार्य तथा अनेक विद्वानों साधु मुनियों के जैन दर्शन के गूढ़ विषयों के अध्यापक, यानी उन्होंने उनको भी सिखाया था। शिक्षा और दीक्षा गुरु 105 शुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, ये जो वहाँ के जो है ना, कहाँ इसरी वहाँ रहते थे मेरे ख्याल से, और शिखर जी के पास जो है ना इसे पारसनाथ। दीक्षा के बाद उनका नाम शुल्लक मनोहर जी वर्णी सहजानंद महाराज। समाज के प्रतिदिन लगभग 500 ग्रंथों की रचना, श्री सहजानंद शास्त्रमाला की स्थापना, वर्णी प्रवचन प्रकाशिनी संस्था की स्थापना, श्री भारतवर्षीय वर्णी जैन साहित्य मंदिर की स्थापना, उत्तर प्रांतीय गुरुकुल हस्तिनापुर की स्थापना, अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के प्रणेता, यानी उनके निमित्त से ये सारी अनेक संस्थाएं स्थापित हो गई। और साहित्य सृजन काल 1942 से लेकर 1978, शरीर त्याग 29 मार्च 1978, अभी हम शुरू करते यहाँ से। मंगलाचरण अभी हमने जो देखा है वही आत्मानुशासन का ही है। पहले पेज से, आत्मा के अनुशासन के यत्न में मंगलाचरण। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य देव ने यह आत्मानुशासन नाम का ग्रंथ लिखा है। इसमें आत्मा पर अनुशासन किया है। हम कहते हैं राजा का अनुशासन चलता है, यहाँ किसके अनुशासन है, हम कहें यहाँ तो गवर्नमेंट, महावीर का शासन काल है, शासन काल है ने उनके अभी जो उन्होंने उपदेश दिया वो भी चल रहा है। जब तक एक तीर्थंकर से दूसरा तीर्थंकर जब तक नहीं, उनका उपदेश नहीं शुरू होता, पूर्व के तीर्थंकर का शासन काल कहते हैं, अनुशासन कहते हैं टू रूल जैसे हम कहेंगे। हाँ हाँ, देखो अभी हमने शुरू किया है पढ़ना। यहाँ कहते कि यानी इस ग्रंथ में आत्मा पर अनुशासन किया है, उस पर साम्राज्य हूँ। जिस प्रकार यह आत्मा सुबोध को प्राप्त होकर, सुबोध सम्यक बोध, सन्मार्ग में लगे, सत्मार्ग सही मार्ग, उसी प्रकार का उपदेश इसमें दिया गया है। अर्थ ग्रंथ के आदि में आचार्य देव मंगलाचरण कर रहे हैं। ऊपर हमने अभी पढ़ा था लक्ष्मी निवास निलयम, लक्ष्मी के निवास का जो मंदिर है, निवास रहने ने उनका रहना रेटा, उसको वास कहते हैं, निवास कहते हैं। निलय हम घर को भी निलय कहते हैं। आप साउथ में गए, वहाँ सारे निलय निलय नाम होते हैं, ये जो हाँ सरस्वती निलय वगैरह। आप श्रवण बेलगोला में गए होगे, वहाँ एक एक जो उनके धर्मशालाएं हैं उनके भी निलय 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 ऐसे अलग अलग नाम है। तो लक्ष्मी के निवास का जो मंदिर है, अर्थात जहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, मंदिर का अर्थ वो हम जिनेन्द्र भगवान का मंदिर है नहीं, जिना मंदिर वो अर्थ नहीं है। यहाँ महल को भी मंदिर कहते हैं, क्योंकि देवों की जो वर्णन आता है त्रिलोक सार वगैरह में, तो उनके मंदिर कहने में आते हैं वहाँ। ये सारे देव देवियों के वगैरह मंदिर है नहीं, क्या है वो उनके महल है। और जहाँ विलय विलीन हो गया है, विलीन विलयम यानी वो शब्दों का एक दूसरे के साथ अनुप्रास और उसी कुछ अलग अर्थ में वो है ना, निवास निलयम विलीन विलयम, विलय विलीन हो गया है, ऐसे वीर प्रभु को अपने हृदय में धारण करके। लक्ष्मी का निवास होता है नहीं, वो तो केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त कर दी है उन्हें, अपने हृदय में धारण करके निधाय हृदि वीरम, भव्य जीवों के मोक्ष के लिए मैं आत्मानुशासन ग्रंथ को कहूंगा, वक्षेन में कहूंगा, मोक्षाय मोक्ष के लिए किसके, भव्यानाम भव्यों के। इसमें वीर प्रभु को नमस्कार किया है। वीर का अर्थ नाम की अपेक्षा से वर्धमान स्वामी है, और शब्द व्युत्पत्ति की अपेक्षा से यानी शब्द कैसे तैयार हुआ उसकी अपेक्षा से वीर का अर्थ है जो विशिष्ट लक्ष्मी को प्रदान करे। वीर में तीन शब्द है, ह्रस्व वी दीर्घ ई और र, वी ई र, ये तीनों स्वतंत्र शब्द है। विशिष्टाम ईम लक्ष्मीम राति यानी ददाति इति वीरः, जो विशिष्ट लक्ष्मी को देवे उसे वीर कहते हैं। विशिष्ट क्या लक्ष्मी है? ज्ञान आत्मज्ञान। विशिष्ट लक्ष्मी आत्मा की ज्ञान लक्ष्मी, उसकी प्राप्ति के निमित्त है ये प्रभु, निमित्ती नहीं निमित्त है ये प्रभु। उसको वीर कहते हैं, यानी वीर कहने से सारे तीर्थंकर भी उसमें आ गए, अन्य भी सब आ गए उसके अंदर। अब सकल पदार्थों में साधारण गुणों का दर्शन, सकल पदार्थों ने सभी द्रव्य यानी वो सामान्य गुणों के द्वारा द्रव्य की सिद्धि होती है, यानी ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, सभी के अपने अपने, इसलिए उनको सामान्य भी कहेंगे, साधारण भी कहेंगे। समस्त पदार्थ सत्स्वरूप की दृष्टि में एक समान है। अभी हमने जो सुख यहाँ पुस्तक पढ़ी थी वहाँ सभी जीवों को लिया, चैतन्य सामान्य की अपेक्षा सभी समान है लिया, और कई उपाधिक भाव अलग अलग है सबके, हर एक के कर्म उपाधि के हो निमित्त से होने वाले भाव जुदे जुदे हैं, परंतु सत सामान्य जिसको हम कहेंगे चित सामान्य, सत कहने से सभी छह द्रव्य आ गए, चित सामान्य कहने से सभी जीव द्रव्य आ गए। वहाँ उसकी बात बारंबार ली थी, यहाँ सभी पदार्थों की बात ले रहे हैं। समस्त पदार्थ सत स्वरूप की दृष्टि में एक समान है। प्रत्येक पदार्थ में अस्तित्व, वस्तुत्व, कोमल गाना, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशवत्व लिखा है उन्होंने। हम प्रदेशत्व भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखते हैं प्रदेशवत्व, प्रमेयत्व, ये छह गुण हुआ करते हैं। यानी है तो अनंत, परंतु ये छह की मुख्यता से हमें वस्तु का स्वरूप ख्याल में आ जाता है। यदि कुछ है तो उसमें ये छह बातें अवश्य है, जिनमें ये छह गुण नहीं है वो चीज ही नहीं है। चीज ही नहीं है, द्रव्य, हाँ, उसका अस्तित्व ही नहीं है, चीज ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में ये छह गुण तो है ही है। अस्तित्व का अर्थ है कि जिस गुण के कारण पदार्थ का अस्तित्व रहे, पदार्थ में सत्ता बनी रहे, उसका नाम अस्तित्व गुण है। जब कोई वस्तु है तो उसमें अस्तित्व आ ही गया, अस्तित्व न हो तो पदार्थ ही कैसे कहलाए। पदार्थ में अस्तित्व गुण है अर्थात है, यानी पदार्थ है, ये है वाली सिद्धि कर दी। ये आपका सारा विषय है, अभी हमको लेना पड़ रहा है, आपका विषय हमको लेना पड़ता है। अस्तित्व न हो तो पदार्थ ही कैसे कहलाए। कहते अस्तित्व गुण से सत स्वरूप हुए अर्थ में वस्तुत्व की झलक। अस्तित्व गुण के कारण सत कहेंगे, सत्ता स्वरूप है। अब उसमें उस अर्थ में यानी पदार्थ में वस्तुत्व की झलक, अभी वस्तुत्व गुण को बताएंगे। जो है है, वह यदि सबकी अपेक्षा से है होने लगे वह पदार्थ ही न रहेगा। जैसे किसी एक वस्तु को निगाह में लेकर उसके प्रति कहा जाए, मान लो चौकी को निगाह में ले लिया, अब इसके बारे में कहे कि यह चश्मा है, यह पुस्तक है, तो चौकी कहाँ रही फिर। जो भी है वह अपने स्वरूप से है, पर के स्वरूप से नहीं है। यानी हरेक का अपना अपना स्वरूप है, अपना वस्तुपना है। ये कुछ अलग ढंग से बताना चाह रहे। देखिए, मुख से कोई शब्द बोले तो स्यादवाद को आना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि यह चश्मा है, तो इसका अर्थ यह है कि चश्मे को छोड़कर बाकी जितने पदार्थ है वे नहीं है। यानी हम उसका यूज तो करते हैं लौकिक में, हमारी भाषा तो ऐसी होती है। हमने कहा ये काला है तो ये काला है कहते, ये सफेद नहीं, नीला नहीं, ये पीला नहीं, ये सब सिद्ध हो जाता है। और उसी में वो गर्भित है कहने में, तो क्योंकि जो भी शब्द बोले उसमें स्यादवाद आ जाता है। आप ये बताए ना, हमने कहा ये चश्मा है तो इसका अर्थ हुआ चश्मा है, हाँ तो ये पेन नहीं है, टेबल नहीं है, पुस्तक नहीं है, सब आ गए उसके अंदर। यह जहाँ है का विधान है वहां नहीं साथ में जुड़ा हुआ, यानी अस्ति है वहां नास्ति साथ में। उन्होंने सिंपल शब्दों में है और नहीं है कई बार, जो हम कहते हैं वस्तु में अस्ति नास्ति दो है, स्वरूप से अस्ति है तो पर रूप से नास्ति है। जहां नहीं का विधान है वहां है साथ जुड़ा हुआ है। जगत में कोई भी ऐसा है नहीं है जो नहीं है को छोड़कर है। देखो, जगत में कोई भी ऐसा है को इन्वर्टेड में डालो, जगत में कोई भी ऐसा है नहीं है जो नहीं है को छोड़कर रहे, समझ में ना। जैसे नहीं है उन्होंने इन्वर्टेड में डाला, वैसे है को भी इन्वर्टेड में रखो। देखो, है नहीं ने, जगत में कोई भी ऐसा, ऐसा को छोड़ो, ऐसा के बाद केवल है को इन्वर्टेड में रखो, इन्वर्टेड कॉमा में। यानी जगत में कोई भी ऐसा है नहीं, यानी अस्थि नहीं है जो नहीं है को, यानी नास्ति को छोड़कर रहे, यानी जगत में किसी की भी अस्थि ऐसी नहीं है कि जो नास्ति को छोड़कर, यानी जहाँ अस्थि है वहाँ नास्ति साथ में है। और ऐसा भी कोई नहीं है, ये नहीं है भी इन्वर्टेड में रखो, ऐसा भी कोई नहीं है जो है को छोड़कर रहे, नहीं केवल नहीं को इन्वर्टेड में रखना है को नहीं। इसी को कहते विधि और निषेध। विधि ने है बताना वो विधि होती है, और नहीं वो निषेध होता है। अस्ति ये विधि है, नास्ति वो निषेध है। विधि और निषेध का परस्पर में अविनाभाव है। देखो ये सिंपल भाषा में है नहीं है तो समझ में आते, उसी को विधि और निषेध कहेंगे तो हम गड़बड़ा जाते हैं ना। ये उसके लिए तो न्याय की भाषा है, ये विधि और निषेध साथ में रहेंगे। विधि निषेध परस्पर में अविनाभाव है, यानी जहाँ विधि है वहाँ निषेध है, जहाँ निषेध है वहाँ विधि गर्भित है उसके। हम मुंह से बोले या नहीं बोले वहाँ पर है वो बात। बोलने में ही स्यादवाद भरा है, यानी कोई भी आप उच्चारण करते हैं, शब्द बोलते हैं, कथन करते हैं, तो कोई भी कथन में स्यादवाद भरा हुआ ही होता है। भले ही कोई पुरुष दूसरी दृष्टि का व्यावहारिक उपयोग न करे, व्यवहार में हम नहीं कहते ये लाल है तो ये पीला नीला नहीं, ऐसा व्यवहार में उसका बोलने का प्रघात नहीं है, परंतु उसमें वो गर्भित है। क्या कहते, भले ही कोई पुरुष दूसरी दृष्टि, दृष्टि एक दृष्टि से जब कथन है, कौन से, अस्थि का कथन है, तो नास्ति का कथन वहां न भी करे, इसको कहते दूसरी दृष्टि का व्यावहारिक उपयोग न करे, किंतु अंतकरण में दूसरी दृष्टि समाई हुई है, यानी उसके वो गर्भित है, उसमें समाई हुई है, अन्यथा वह बात नहीं कर सकता है। दूसरी दृष्टि न रहे और फिर बात करे तो वह पागल पुरुषों में माना जाता है। प्रत्येक पदार्थ है, यह तो हुआ अस्तित्व गुण, और वह पदार्थ अपने स्वरूप से है, पर के स्वरूप से नहीं है, ऐसा अपने स्वरूप का उपादान और पर स्वरूप का परिहार। यह उपादान और परिहार, यानी वो इसको इंक्लूड लेना और इसको छोड़ना, इस तरह से। फिर से देखो, प्रत्येक पदार्थ है कह दिया, यह तो हुआ अस्तित्व गुण, और वह पदार्थ अपने स्वरूप से है, पर के स्वरूप से नहीं है, ऐसा अपने स्वरूप का उपादान और पर स्वरूप का परिहार जिस गुण के कारण हो उसे कहते हैं वस्तुत्व गुण, यानी वस्तु का वस्तुपना उसमें सिद्ध हो जाता है। तीसरा पॉइंट, पदार्थों में द्रव्यत्व गुण का दर्शन, यानी पदार्थ में उसका कार्य क्या है, वो हमने जो परिभाषा कही है वो तो बाद में बताएंगे शायद, अभी यहाँ तो उस अलग एंगल से उसको समझा रहे हैं। इन समस्त पदार्थों के छह सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है, जिनके बिना पदार्थ अपना अस्तित्व नहीं रख सकते। पदार्थ में दो गुण तो कबूल कर लिए हैं कि वे है और अपने स्वरूप से है, पर स्वरूप से नहीं है। इतने मात्र से पदार्थ की सत्ता कायम नहीं रहती। पदार्थ यदि है तो वह निरंतर किसी न किसी रूप परिणमता ही रहेगा। हम कहते हैं निरंतर परिणमन होता रहता है, तो है अपने स्वरूप से है, और है तो किसी न किसी रूप से परिणमता रहेगा। ऐसा जगत में कोई है नहीं है जो है तो किंतु परिणमन नहीं करता। क्या कहते हैं, है नहीं है करते, कोई ऐसा पदार्थ है नहीं, यानी कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है कि जो है परंतु परिणमता नहीं है, यानी जितने भी है यानी जितने भी अस्तित्ववान पदार्थ है वो निरंतर परिणमते, निरंतर शब्द डाला, अंतर पड़े बिना हर समय,
भले ही समान परिणमन होने से ध्यान में न आ पाए, यह परिणम रहा है। क्या कहते हैं? मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ ना, हमारे बच्चे आते तो कहते वो सोफा कितना पुराना है, वही का वही रखा है, अभी चेंज नहीं करते। तो उन्हें बोला हर समय चेंज हो रहा है। उसका अर्थ क्या है उसमें? तो यहाँ वही कहा, भले ही समान परिणमन होने से, यानी वैसा का वैसा परिणमन होने से ध्यान में ना आ पाए, परंतु कि यह परिणम रहा है। हमें क्या लगता है ये परिणम रहा है? हमें तो ऐसा का ऐसा दिखता है, वो जैसे हमने रखा है ऐसा का ऐसा दिखता है, उसका परिणमन हमारे ख्याल में नहीं आ रहा। जैसे कोई पुरुष 10 शेर वजन की वस्तु को हाथ पर धरे हुए 15 मिनट से खड़ा है, न हाथ हिले न सिर हिले, ज्यों का त्यों खड़ा है, तो उसे देखकर सामान्य लोग यह कहेंगे कि यह कुछ कर ही नहीं रहा है, ज्यों का त्यों खड़ा है। पर आपको क्या मालूम है, वह प्रति सेकंड बड़ा भारी काम कर रहा है, वह अपना नया नया बल लगा रहा है, नहीं तो चीज गिर जाती। क्या कहा? यानी हर सेकंड में उसका अपना बल लगा रहा है, तब तो 15 मिनट हो गए ना उसके, तो कहते अपना नया नया बल हर समय लगा रहा है। समान परिणमन है, समान यानी वैसा का वैसा, लोगों की दृष्टि में नहीं आ रहा, किंतु परिणमन निरंतर हो रहा है। यूं ही प्रत्येक पदार्थ निरंतर परिणमता रहता है, ऐसे परिणमशीलता का गुण होना यही द्रव्यत्व गुण है। यानी द्रव्यत्व गुण क्या बताता है? परिणमनशीलता है। देखो ये सब द्रव्य के गुण बता रहे हैं। उसको भी आत्मा की 47 शक्ति में उसको विशेषण कहा था ना, कि कलशामृत में आई थी बात, विशेषण शब्द आया था गुणों के लिए, 47 शक्ति में आया था। यानी द्रव्य कैसा है पूछेंगे, समझे नहीं, जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र वगैरह, ये तो उसको गुण कहते हैं। ये द्रव्य के विशेषण है, द्रव्य के कैरेक्टर्स है, लक्षण है, परंतु गुण नाम की कोई जुदी चीज नहीं। जैसे द्रव्य जुदी चीज है, वैसे गुण नाम की चीज नहीं है, वो द्रव्य का लक्षण है, उसके गुण कह रहे हैं। चौथा नंबर, पदार्थों में अगुरु लघुत्व गुण की अनिवार्यता। अब पदार्थ में 3 गुण तो स्वीकार कर लिए, लेकिन यह द्रव्यत्व गुण कभी उद्दंडता करने लगे कि मैं तो परिणमन का विरोध रख रहा हूँ, परिणमूंगा, चाहे अपने रूप परिणमूं, चाहे अन्य किसी वस्तु रूप परिणम जाऊं, मुझे तो परिणमन का हुक्म मिल गया है। क्या कहते हैं? उद्दंडता ने चाहे जैसा परिणमन करे, स्वच्छंद हो जाए, कभी इतना का परिणमन हो जाए कि मिट भी जाए, 0 हो जाए। अब इस चर्चा में वस्तु स्वरूप के प्रसंग में यदि ऐसा होने लगे कि कोई पदार्थ जैसा चाहे किसी दूसरे रूप परिणमने लगे, तो कितना अंधेर हो जाए, चीज ही मिट जाए। यदि यह मैं इस चौकी रूप परिणम जाऊं, तो इसका अर्थ है कि मैं नहीं रहा, अब चौकी बन गया। ऐसा कभी देखा है? तो यह भी एक नियंत्रण है प्रत्येक पदार्थ में कि वह अपने स्वभाव रूप परिणमेगा। किसी परवस्तु के स्वभाव रूप नहीं परिणमेगा। हम उसको कहते हैं ना, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, वो द्रव्य के गुण बिखर कर अलग नहीं, वो सभी क्या है, वो द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। वो एक द्रव्य मिटकर पर द्रव्य रूप नहीं हो सकता, ना ही पर पर्याय रूप हो सकता है। यहाँ कहते अपने स्वभाव रूप परिणमेगा, किसी परवस्तु के स्वभाव रूप नहीं परिणमेगा। तो हम चैतन्य है तो चैतन्य रूप परिणमेंगे, काला गोरा रूप नहीं परिणमने वाले। इस विशेषता को कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। अ मायने नहीं, कॉमा लगा लो, गुरु मायने वजनदार, लघु मायने हल्का। पदार्थ न वजनदार हो जाए न हल्का हो जाए। वजनदार कैसे होगा? पदार्थ दूसरे का परिणमन भी अपने प्रदेश में रख ले तो वजनदार हो जाएगा। समझ में नहीं? हल्का भारी वाला वो स्पर्श गुण की परे वो नहीं लेना है। बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, यानी बड़ा यानी उसमें कोई अन्य का गुण आकर मिल जाए तो बड़ा हो जाएगा, इसमें से कुछ चला जाए तो छोटा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि दूसरे का परिणमन भी अपने प्रदेश में रख ले तो वजनदार हो जाएगा। हल्का कैसे होगा? पदार्थ अपना परिणमन अपने से बाहर करे, दूसरे पदार्थ में रख दे तो वो हल्का हो जाएगा। कुछ ऐसा होता नहीं, पदार्थ तो अपने ही स्वरूप से निरंतर परिणमता रहता है। यानी पहले तो द्रव्य तो निरंतर परिणमता है, इतना यह बताया। अब अगुण लघु तो अपने स्वरूप से परिणमता है, पर रूप से कभी नहीं परिणमता। पांच व छह एक साथ बता रहे हैं प्रदेशवत्व और प्रमेयत्व गुण का दर्शन। यो चार गुण सब सत पदार्थों में सामान्य रूप से हैं। इतनी बात कहने पर भी कुछ स्पष्ट ज्ञात नहीं होता। कैसे स्पष्ट ज्ञात हो? ये चार बातें जिसमें बताई जावे उसका आकार, प्रदेश, आधार जब तक दृष्टि में न हो, यानी ये सब गुण बता रहे तो किसके आधार से रहे? कुछ तो वहाँ तो कुछ उसके वॉल्यूम तो कुछ होगा ना, उसका स्प्रेड कुछ होगा, तो उसका कुछ आकार, उसके प्रदेश, उसका जो स्प्रेड हम कहेंगे ना, वॉल्यूम, क्षेत्र उसका, जब तक दृष्टि में न हो तब तक इन चार बातों का क्या अर्थ हुआ? प्रत्येक वस्तु प्रदेशात्मक है, इसको प्रदेशवत्व कहा। प्रदेशवत्व, प्रदेशवान, जिसमें ये सर्व गुण पाए जाते हैं इसी विशेषता को कहते हैं प्रदेशवत्व। इतना सब कुछ हो जाने पर भी क्या कहते हैं? यानी प्रदेशात्मक है वस्तु, प्रदेशात्मक है। हम प्रदेशत्व गुण के वो आकार वो बताते हैं, इसको ये कहना है उसका आकार यानी उसका कुछ अपना वॉल्यूम कुछ स्प्रेड है, यानी वो प्रदेशी पना है, भले एक प्रदेशी होगा या अनेक प्रदेशी, इसलिए इसका नाम प्रदेशवत्व कहा। प्रदेशवान है वस्तु, अपने प्रदेश से युक्त है, यानी प्रत्येक वस्तु को कोई ना कोई अपना क्षेत्र है, उसी को आकार कहते हैं। आकार यानी शेप वाला आकार यहाँ नहीं लिया, प्रदेश वाला जो हम असंख्यात प्रदेशी ये उसका प्रदेशवत्व इस तरह से लिया। यानी ये जो हमने देखी ना अस्तित्व वस्तु आदि ये विशेषता है किसके आधार से रह रही है? ये प्रदेशों के आधार से रहती, तो उसको प्रदेशवत्व कहा। तो कहते ये प्रदेशवत्व। अब यहाँ एक फुल स्टॉप देना, विशेषता को कहते प्रदेशवत्व। इतना सब कुछ हो जाने पर भी यदि पदार्थ किसी के द्वारा भी ज्ञेय नहीं है तो पदार्थ का क्या उठता है? यानी ऐसे पदार्थ है पर किसी ने जाने ही नहीं, तो पदार्थ है या नहीं है तो बराबर है ना, हमारे किसी ने जाने ही नहीं। यूँ प्रमेय तो गुण भी समस्त पदार्थों में विद्यमान है, यानी वो पदार्थ अवश्य जाने जाते हैं। ये छह सामान्य गुण बताए। अभी आत्मा का असाधारण गुण, इन छह गुणों से तो मेरी सबसे समानता है, क्योंकि मेरे पे भी ये छह गुण हैं, अन्य सभी द्रव्यों में भी ऐसे छह गुण हैं। अब मुझ आत्मा में कौन सी वह विशेषता है जिसके कारण मैं अन्य समस्त पदार्थों से जुदा ज्ञान में आ सकूं? वह विशिष्ट गुण है ज्ञान, क्योंकि समस्त पदार्थ तो ज्ञान में आ रहे हैं, प्रमेयत्व गुण भी है, पर मेरा कुछ अलग सा स्वरूप ख्याल में आ गए यहाँ का, समस्त पदार्थों से मैं जुदा जाना जा सकूं, तो उसमें यह विशिष्ट गुण है ज्ञान। ज्ञान गुण एक ऐसा है जो आत्मा को छोड़कर अन्य किसी पदार्थ में नहीं रहता। वो छ के ऊपर रफार देना। यानी वो जीव का विशिष्ट विशेष गुण है, असाधारण गुण है। तब यह ज्ञान एक विशिष्ट लक्ष्मी हुआ। लक्ष्मी का अर्थ चार हाथ दो पैरों वाली कोई कल्पित स्त्री नहीं है। लक्ष्मी, लक्ष्य, लक्षण, ये तीन एकार्थक शब्द है। और कोई अर्थ मालूम है ऐसा तीन के समान ऐसा कोई हमने देखा था? ग्रंथ भी बताती हूँ, पंचाध्यायी में क्या लिखा था? अरे लक्षण के अर्थ में लक्ष्म कहा था आप, ये लक्ष्म, हाँ तो यहाँ लक्ष्म के बदले लक्ष्मी कहा, लक्ष्मी, लक्ष्मी में जो क्ष्म है ना वैसा है, लक्ष्म, लक्ष्म, क्ष आधार म, लक्ष्मी कैसे कहते हैं? वो इकार निकालो तो क्या होगा? लक्ष्म होगा। यानी पंचाध्याय में वो लक्ष्म शब्द भी आया था लक्षण के अर्थ में। शायद यहाँ लक्ष्य जो लिखा है उसका लक्ष्म ही होना चाहिए, शायद लक्ष्म होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य तो जिसका लक्षण होता है उसको लक्ष्य कहते हैं, ये लक्ष्म होना चाहिए, लक्ष्मी, लक्ष्म और लक्षण, क्योंकि हमने पंचाध्याय में लक्ष्म शब्द सुना था, उसके लक्ष्म होना चाहिए था ये मुझे लगता है। ये तीन एकार्थक शब्द है। लक्षण का नाम लक्ष्मी है, उसका जो विशिष्ट लक्षण है वही मेरी विशिष्ट लक्ष्मी है, यानी आत्मा का जो लक्ष्म है वो मेरी लक्ष्मी है, वह लक्ष्मी है ज्ञान। इस ज्ञान तत्व को जो प्राप्त करता है उसे कहते वीर। पहले उन्होंने बताया था वी, ई और र, ये तीन शब्द मिलकर वीर बना है। उन्होंने पहले उसका अर्थ भी बताया था पहले पेज पर, विशिष्टाम ईम यानी लक्ष्मीम रात यानी ददाति, विशिष्ट लक्ष्मी को जो देते हैं, क्या देते हैं हमें? वो हमारा ही आत्मा ज्ञान, जो हमें जो मालूम नहीं था वही उन्होंने हमको उपदेश के द्वारा मालूम कराया। ऐसा वीर, वो स्वयं उस लक्ष्मी से युक्त है, ये भी हो सकता है उसकी बात। ऐसा वीर ज्ञान पुंज अनादि निधान प्रभु होता है। आनंद निधान आनंद का निधान खजाना है। यानी हम आप सब वीर हो गए हैं ना, ज्ञान पुंज आनंद के निधान है। वीर प्रभु को हृदय में धारण करके इस ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा आचार्य देव ने की है। यानी हर एक का अपना वीर प्रभु तो स्वयं अपना ज्ञान पुंज आनंद निधान है, उसको हृदय में धारण करके, और व्यवहार में कहेंगे तो वीर जिनेन्द्र, उनका शासन चल रहा है, तो ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा आचार्य देव ने की है। देखो हमेशा मंगलाचरण करते हैं कि पंच परमेश्वर, या हमने किसी का नाम लेते उनका नमस्कार करते, उनको आचार्य भी उनको नमस्कार करके ग्रंथ की शुरुआत करते हैं, इसको कहते हैं मंगल, आदि मंगल कहते हैं इसको। प्रभु के निर्णय से प्रभुता की प्राप्ति का उत्साह। प्रभु का नाम क्यों लेना है? आत्मा के अनुशासन की बात तभी विशिष्ट बनती है जब प्रभु को हृदय में धारण किया जाए। हम भली बातें तो करें, और भली बात यह हो सकती है या अमुक ने की है, ऐसा कुछ भी चित्त में न रहे तो भक्ति की बात करने में विघ्न आ जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? कोई भी चीज़ है यदि वो असंभव है तो बस ठीक, हम बातें करके रह जाएंगे, परंतु ये बात हम प्राप्त कर सकते हैं तो हमें उसका सामने उदाहरण, अरे इन्होंने भी ये कर दिखाया,
हमेशा अरे बच्चा था अभी तो हमारे सामने बड़ा हुआ, ये तो अभी बड़ा डॉक्टर हो गया, ये बड़ा इंजीनियर हुआ, अरे इसने तो ये तो साइंटिस्ट हुआ। यानी ये कोई चीज़ कोई प्राप्त कर सकता है तो हमें भी उसमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, उत्साह आ जाता है उसके प्रति। यहाँ क्या कहते देखो, प्रभु को हृदय में क्यों धारण किया जाए, तो कहते हम भली बातें तो करें और भली बात यह हो सकती है, यानी ऐसी बात भी हो सकती है जो हम कहते ना भगवान कोई जन्म से भगवान नहीं है, वो भी हमारे जैसे वो बालक जन्म था, मनुष्य में जन्मा है और फिर उन्होंने इससे इस तरह समय तो प्राप्त किया, मुनि हो गए और फिर अरहंत दशा प्राप्त की। हम आप भी ये कर सकते हैं, ये हमें उससे जाहिर हो जाता है। और यदि ऐसा कुछ भी चित्त में न रहे तो भक्ति की बात करने में विघ्न आ जाएगा। किसी भी सदाचार का पालन हम भली भांति तब कर पाते हैं जब हमारे हृदय में यह निर्णय हो कि ऐसे सदाचार में कुशल व्यक्ति भी होते हैं जिनका ज्ञान करके हम में यह उत्साह जगता है हम भी सदाचार का पालन कर सकें। हम कहते हैं ये तो अरे अपने बस की बात नहीं, ये बहुत कठिन है जटिल है, तो कहते हैं अरे हमारे जैसे इन्होंने कर दिखाया तो हम भी कर सकते हैं। कल वो हमारे विमला बेन का फोन आया था जयपुर से, अपनी यहाँ की स्वाध्याय की सब सीरीज सुनती है ना, जिसे हमने धवला जय धवला और महाधवला समाप्त किया पूरा, रोज की 4-4.5 घंटे सुनती थी, 11.5 साल लगे। उन्होंने बोला हमको करने में 11 साल लगे, 3000 में शुरू किया था हमने, तो अपन बीच बीच में हम 3-3 महीने जाते थे ना, इधर जाओ उधर जाओ प्रवचन के लिए। यानी कोई करता है तो लोगों को वो प्रेरणा भी देना, अरे हम भी कर सकते हैं। हाँ देखो, किसी भी सदाचार का पालन हम भली भांति तब कर पाते हैं, सदाचार कहो ये व्रतादि क्या है, वो सदाचार ही है ना, आचरण ही है कुछ विशिष्ट, जब हमारे हृदय में यह निर्णय हो ऐसे सदाचार में कुशल व्यक्ति भी होते हैं जिनका ज्ञान करके हम में यह उत्साह जगता है हम भी सदाचार का पालन कर सके। जैसे जो आम जनता कहते अरे आप रात को भोजन नहीं करते कैसा होता है, आपको भूख नहीं लगती, अरे पर जब हम करते हैं हमारे घर में हम बड़ों को देखते थे बचपन में तो वो भी करते थे, तो हमें वो अरे ये कर सकते हैं, उन दूसरों का देखकर हम भी इसको पाल सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं। मैं तो ये लगता है कि आज की दुनिया में ये कैसा संभव है, सब कुछ संभव है, करने वाले हैं तो ये सभी चीज़ें व्रत आदि का पालन हो सकता है। अभी ये स्वयं क्षुल्लक जी है ना, तो उन्होंने जो कुछ क्षुल्लक दीक्षा अंगीकार की है वो भी पहले प्रोफेसर वगैरह बन चुके थे, वो बहुत सारा पढ़ाया भी था, तो उन्होंने भी अंगीकार किया, यानी वो क्या है उन्होंने अपने गुरु के प्रति उसका उनको देखा है, तो उसमें सदा वो भी इसको सदाचार ही कहते हैं, सदाचार पालन करने में उत्साह जगता है। प्रभु को हृदय में धारण करने का प्रयोजन यह है कि प्रभु की प्रभुता पहचान कर अपनी प्रभुता के लिए उत्साह जगे। यानी भगवान का स्वरूप क्यों हमें हृदय में धारण करना है, जैसे कुनकुंदाचार्य सिद्ध भगवान को स्थापन करते हैं हमारे हृदय में, वंदित तो सर्व सिद्धे कहकर क्यों स्थापन करना है, तो कहते हैं प्रभु का हृदय में धारण करने का प्रयोजन यह है कि प्रभु की प्रभुता पहचान कर, उनका स्वरूप पहचान कर अपनी प्रभुता के लिए उत्साह जगे। हम भी स्वभाव से ऐसा है तो हम भी वो प्रभुता प्रकट करने में उत्साहित हो जावे। यों वीर प्रभु को हृदय में धारण करके अनुशासन कहने का संकल्प किया, आचार्य महाराज भी संकल्प करते हैं कि मैं अभी ये बताऊंगा मैं कहूंगा। प्रभु की लक्ष्मी निवास निलयता, जो हमने मंगलाचरण में जो लक्ष्मी निवास निलयम कहा था वो क्या है उसको बताएंगे, और विलीन विलयता इसके बारे में अब बता रहे हैं। वीर प्रभु लक्ष्मी के निवास के घर है जिसमें स्वयं ज्ञान लक्ष्मी का निर्बाध निवास हो रहा हो,
वही प्रभु तो लक्ष्मी को प्रदान कर सकता है।
प्रदान करने में कुछ निकाल के देते तो नहीं है, जो हम कहेंगे ना लक्ष्मी को देते हैं प्रदान करते हैं, वो उपदेश की बात यहाँ बताना चाहते हैं।
ये प्रभु स्वयं इस ज्ञान लक्ष्मी के घर हैं, इन्होंने विलय को विलीन कर दिया है।
विलय होना यानी नष्ट होना, नाश होना, और उसको विलय कर दिया यानी वो नष्ट नहीं होने वाली। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब वो केवल ज्ञान से कभी छुट नहीं होने वाला,
वो तो अनंत काल तक ऐसा का ऐसा रहेगा।
तो कहते प्रभु स्वयं इस ज्ञान लक्ष्मी के घर है, इन्होंने विलय को विलीन कर दिया है, अर्थात विनाश का विनाश कर लिया है। विलय मायने पाप के है। अच्छा, विलय उन्होंने पाप को क्या, पाप का विनाश किया। पाप जहाँ विलीन हो गया है, नष्ट हो गया है, ऐसे निष्पाप ज्ञान के पुंज वीर प्रभु को, निष्पाप कहो या वितराग कहो की बात है, हृदय में धारण करके आत्मानुशासन कहने की प्रतिज्ञा की गई है। आत्मा का अनुशासन अर्थात आत्मा के स्वरूप के अनुकूल शासन, अनु एने टू फॉलो है ना, अनुसरण करना, अनुशासन, जैसा स्वभाव है वैसा, आत्मा के स्वरूप के अनुकूल शासन। शासन का अर्थ साधारणतया शासन है, और अनुशासन का अर्थ प्रयोजन की अनुकूलता पूर्वक शासन करना। शासन करने ने उसको रूल करना है, हम कहते हैं जैसे राजा शासन चलाता है अपना। अनु कहे ना अनुशासन, प्रयोजन की अनुकूलता पूर्वक, यानी अपने प्रयोजन की अकॉर्डिंग टू अपना प्रयोजन शासन करना। आत्मा का जो स्वभाव है उस स्वभाव के विकास के अनुरूप, किसके अनुरूप अनुशासन करना है, शासन करना है, तो आत्मा का जो स्वभाव है उस स्वभाव के विकास के अनुरूप जो आत्मा पर शासन होता है उसे अनुशासन कहते हैं। अभी आत्मा का कैसा है स्वभाव, तो आत्मा है ज्ञानानंद स्वरूप। इस ज्ञान का जैसे परिपूर्ण विकास हो और इस आनंद का जिस प्रकार पूर्ण विकास हो, जिसको हम अनंत ज्ञान और अनंत सुख कहेंगे, उस प्रकार से आत्मा को लगाने का उपदेश करना सो आत्मानुशासन है। यानी आत्मा को किस काम में लगाना है, जैसा उसका परिपूर्ण विकास हो वैसा। ग्रंथ निर्माण का प्रयोजन, ये तो हमेशा जो मंगल बताया जाता है ना, वो तो क्यों बताए, उसकी किसके निमित्त से हुआ, क्या करेंगे, क्या बताएंगे, इसमें उसका विषय क्या होगा, ये सब मंगलाचरण में कहने की, और वो प्रतिज्ञा पूर्वक कहेंगे। है तो सत्य महाव्रतधारी, जो कहेंगे वो तो सत्य ही कहेंगे, फिर भी प्रतिज्ञा पूर्वक कहने की पद्धति ही है इसकी। ग्रंथ निर्माण का प्रयोजन, यह आत्मानुशासन ग्रंथ जीवों के मोक्ष के लिए कहा जाएगा। और वहां भी भव्यानाम लिखा था उन्होंने, भव्य शब्द आया था ना पहले कुछ, मोक्षाय भव्यानाम, भव्य जाएंगे है ना, तो कहने की पद्धति भव्यों के मोक्ष के लिए। आत्मानुशासन का प्रयोजन संसार के समस्त संकटों से मुक्त हो जाना है। चलो अच्छा है, सभी झंझट समाप्त होने वाले हैं, यानी बिना झंझट के पैसा मिलेगा, अरे वो इटसेल्फ झंझट है। जब तक प्रयोजन चित्त में नहीं समाता तब तक अनुशासन नहीं बन सकता। क्या कहते हैं, यानी हम क्या चाहते हैं, प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, समस्त संकटों से मुक्त होना, तो अगर वो बराबर वो चित्त में वो प्रयोजन नहीं बैठा तो उसके लिए क्यों हम प्रयत्न करेंगे। कोई पुरुष किसी नदी में नाव को चलाए, पहले पूरब की ओर चलाए, फिर पश्चिम को चलाए, फिर दक्षिण को चलाए, फिर उत्तर को चलाए, यो दिशाएं बदल बदल कर नाव को खेवे, तो उसका श्रम पागलपन से परिपूर्ण है। नाव तो जहां की तहां ही रही। नाव चलाने का प्रयोजन तो एक निर्धारित किनारे पर पहुंच जाना है। नदी पार करनी है तो पहल तीर को जाना था। इसी प्रकार जो भी धर्म किया जाता है, उपदेश ग्रहण किया जाता है, उन सब का प्रयोजन अभीष्ट होना चाहिए। जगत के सभी जीव दुखों से डरते हैं और सुख को चाहते हैं, इसलिए प्रयोजन तो दुख से मुक्त करा देने का ही होना चाहिए। अभीष्ट यानी जो इष्ट, हाँ, सबका प्रयोजन अभीष्ट होना, अभीष्ट यानी हमें नक्की होना चाहिए। यानी जो जो हम कर रहे हैं उसका प्रयोजन निश्चित करना चाहिए। प्रयोजन क्या है, किस लिए कर रहे हैं? हाँ, ये दुख से मुक्त होने के लिए। क्या सब लोग करे इसलिए कर रहे हैं? सबने इतने उपवास किए, हम थोड़े तो कहिए एक तो करेंगे नहीं, तो भी लोग हमको क्या करेंगे, इसलिए कर रहे हैं। कहते पहले प्रयोजन नक्की करो कि क्यों कर रहे हैं। ग्रंथ कर्ता का आशय, आशय ने उनका अभिप्राय क्या, आचार्य देव कहने का प्रयोजन बताकर यह भी ध्वनित करते हैं, हे श्रोताजनों, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ संसार के संकटों से छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा पाने की बात कह रहा हूँ। क्या कहते हैं, क्यों कह रहा हो? छुटकारा पाने के लिए क्या कहूँगा? छुटकारा पाने की बात कहूँगा। फिर से देखो, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ संसार के संकटों से छुटकारा पाने के लिए, अब क्या बताऊंगा? छुटकारा पाने की बात कह रहा हूं। समझ में ना दोनों ही बात? ये प्रयोजन क्या है? छुटकारा पाना है। अब क्या कहूंगा? छुटकारा पाने की बात ही कहूंगा, या वहां की कोई गप्पे नहीं करूंगा। कहते मुझे न मान का प्रयोजन है और न कुछ लोभादिक का प्रयोजन है। दुनिया मेरे को अच्छा कहेंगे, मैंने इतने ग्रंथ लिखे, उसके लिए नहीं है। कहीं श्रोताजन यह कल्पना न कर ले, अपनी मान बढ़ाई के लिए यह ग्रंथ रचा जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है। यदि वे ऐसा समझेंगे तो श्रोताओं को कुछ लाभ न होगा, और यह उद्यम श्रोताजनों के लिए ही किया जा रहा है कि वे अभी इस तत्व को परख ले और अपना हित साध ले। कहीं श्रोताजन यह न भ्रम कर जाए कि किसी लोभ के खातिर यह ग्रंथ रचा जा रहा है। नहीं तो वो तो सामने वाला सुनने वाला भी कि ना ये क्यों करा, इसमें इनका कुछ अपना लोभ है, कोई प्रयोजन अपना दिख रहा है। मेरे किसी प्रकार के कषाय का प्रयोजन नहीं है, बल्कि सब जीवों में प्रभुता का स्वरूप निरख कर सब जीवों में प्रभुता का स्वरूप निरख कर उनकी प्रभुता के अनुराग से, चूंकि मुझे मेरी प्रभुता का मेरे में दर्शन हुआ है, सो मुझे अनुराग हो रहा है यह प्रभुता सबके प्रकट हो। क्यों व्यर्थ में भ्रमवश अपने को बर्बाद किए जा रहा है यह प्राणी? देखो आचार्य उनकी कैसी करुणा है, अपनी प्रभुता तो जान ले। तो कहते उनको सहज जब अपने में स्थिरता नहीं होती है तो विकल्प क्या आता है? अरे ये भी सारे प्रभुता के धारक है, वो अपनी प्रभुता को क्यों नहीं जान रहे, क्यों व्यर्थ में अपने को बर्बाद किए जा रहे हैं? एक ज्ञान साध्य ही तो बात है कल्याण करने की। ज्ञान साध्य, ज्ञान में ही साध्य होने वाली बात है, और ये ज्ञान तो हर एक के पास है और बिल्कुल वो सभी प्रभुता संपन्न है, तो क्यों नहीं ये प्राणी कर रहे? इसलिए उनको करुणा से ये उपदेश दे रहे। इतनी सुगम इन्हें प्राप्त करने को अत्यंत सरल, सुगम स्वाधीन, कोई पराधीनता नहीं,
परम हित की बात प्रमादवश नहीं की जा रही। ये प्रमाद है इन जीवों का कि वो इस बात को कर नहीं रहे, इसका मुझे खेद है और प्रभुता स्वरूप का अनुराग है, अतएव मैं इस ग्रंथ को कह रहा हूँ। ये शुभराग है उनका, वो भी राग है, वो भी खेद है, फिर भी हो रहा है। अब यहाँ हम रुकेंगे। जावाणी